نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بقرة آیت نمبر 242 سے 252 اور پارے کا یہ آخری سبق ہے. یہاں سے تھوڑا سا پہلے کچھ کہنا چاہوں گی, پھر بات آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی اللہ نے چاہا. اور وہ کیا ہے کہ ابھی تک ہم نے پیچھے مسلسل 3-4 رکوع تک نکاح, طلاق, عدت اور کچھ اس قسم کے مسائل کو دیکھا کہ جس میں مختلف چیزیں انسانی معاملات اور گھریلو معاملات کی تھی. تقریباً وہ احکامات جس کا کسی بھی مسلمان کو اپنی زندگی کے کسی بھی دور میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس وقت اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ان ساری باتوں کے پڑھنے کے دوران بھی ہم نے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں الجھاتے نہیں ہیں. جو کسی بھی حکم کا اصل موضوع ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں لے کر چلتے ہیں, اور ساتھ ساتھ نکاح کے اور عدت کے اور طلاق کے مسائل کے اندر کہیں تقویٰ کی بات ہوئی, کہیں احسان کی بات ہوئی, کہیں ایک دوسرے کے حق تلفی نہ کرنا, اور اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں سے پارے کے آخر تک, ابھی فی الحال, باقی آگے بھی جب اگلے پارے کے ساتھ جائے گا تو بتاؤں گی, ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. دین اسلام کے بنیادی پلرز میں سے چند چیزیں اس سبق میں ہم دیکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جہاد, جب بھی اسلام کسی بھی سوسائٹی میں آتا ہے تو پہلے سے پھیلے ہوئے ماحول میں جو جراثیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے پر مسلمانوں کے بڑے لیڈرز اور مذہبی رہنما ہیں, ان کو سوسائٹی میں اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے. ظاہری بات ہے کہ باطل پرستوں کی تو خواہش ہوگی کہ باطل پھیلے, لیکن حق والوں کا گول کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اسی میں بھی فرکشن ہوتی ہے. فرکشن سے مراد مخالفت ہے, رگڑ لگتی ہے, تو اس رگڑ کو جہاد کہتے ہیں. یعنی ایسی سوسائٹی میں جہاں لوگ شیطان کی, نفس کی اور معاشرے کی باتیں عام کر دیں اور اللہ کی بات کو سیکنڈری کر دیں, یہ نہیں کہ ختم کر دیں, ختم کبھی نہیں کر سکتے مسلمان, بس یہ کہہ لیجئے کہ نمبر ون پہ خاندان آ جائے, نمبر ٹو پہ اللہ, نمبر ون پہ پیسہ آ جائے, معاشرہ آ جائے, سوسائٹی اور جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہے وہ آ جائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پیچھے چلی جائے. تو ایسے وقت میں پھر جو ضرورت ہوتی ہے اس وقت کہ قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, ہر ممکن طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی جائے, ان کو اللہ اور اس کی مرضی بتائی بھی جائے, اور ساتھ ساتھ اگر اس رستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اور اس پیغام کو پھیلنے سے روکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جنگ کی نوبت ہے تو جنگ کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں تھے, بہت ظلم و ستم ہوئے, 13 سال تک پستے ہی رہے, اور بڑے بڑے بہادر صحابہ جنہوں نے اگلی زندگی میں پھر بہت بہادری کے جوہر دکھائے, جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ حضرت علی جیسا بہادر شخص 13 سال مکہ میں کس ضبط اور تحمل سے بیٹھا رہا. یہ تھی وہ اسٹرانگ لیڈرشپ جو آج بھی مطلوب ہے. اور یہاں چند جملے انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے کہ جہاد کے لیے اسٹرانگ لیڈرشپ ضروری ہے. یعنی اب یہ پورے سبق میں جو کچھ پن پوائنٹس ملنے ہیں نا, اس کو ہم نوٹ کریں گے, پھر انشاءاللہ آیتیں آپ کو زیادہ سمجھ آئیں گی. مدنی دور کے بالکل آغاز کی صورت ہے سورت بقرہ. مدینہ جانے سے پہلے, یا کہہ لیجئے کہ غزوہ بدر سے پہلے پہلے مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی. ابھی ہم آج کے سبق میں دو واقعات پڑھنے والے ہیں. دونوں کا تعلق موت سے ہے, جس میں بنیادی طور پہ ایک چیز پتہ چلے گی کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. انسان اپنی بزدلی یا دنیا کی خواہش سے اپنی زندگی کو دراز نہیں کر سکتا, ہزار کوشش کر لے لیکن اس کی موت کا وقت مقرر ہے, اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ آپ کو اپنے بیڈ روم میں نہیں آ سکتی. یہ بنیادی چیز سمجھائی جا رہی ہے. پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر مسلمانوں کو بدر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, اور وہ کب کی باتیں تھیں, کس دور کی باتیں تھیں, یہ نہیں بتایا, کیونکہ جب بہت ساری چیزیں फिगर्स एंड फैक्ट्स की सूरत में पेश की जाती है ना, तो बाज़ दफ़ा लोग उसमें उलझ जाते हैं और जो असल उनसे सबक लेना मतलूब होता है वो नहीं लेते। तो इंशाल्लाह हम इन वाक़यात को पढ़ते हैं, कोशिश करूंगी कि एक जगह एक तरह की चीज़ें जमा करके फिर उसको आज के हालात के साथ भी जोड़ूं, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को अपने माहौल और अपने हालात के मुताबिक नहीं लेते तो समझ नहीं आती। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लीजिए कि आज के सबक से हमें जिन सवालों का जवाब मिलेगा उसमें एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है हमारे आज ज़हनों में कि क्या जिहाद फ़र्ज़ है और क्या इंडिया के खिलाफ जिहाद, इसराइल के खिलाफ फुलां फुलां फुलां, यानी क्या कोई आप मेरे जैसा जाकर उठकर जिहाद का फैसला दे दे तो वो जिहाद होगा या फिर उसके लिए एक लीडरशिप है। बहुत खूबसूरत सबक है, आपको काफ़ी दिन के बाद एक डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि हम कई दिन से सिर्फ घरेलू जिहाद के साथ उलझे हुए थे। तो आइए ज़रा आयत के साथ चलते हैं, आयत नंबर 243। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, अलम तारा, क्या नहीं तुमने देखा। अब देखने का लफ्ज़ रौ रुयत है, लेकिन जब यहाँ अलम के साथ ये लफ्ज़ आता है तो इसका मानी होता है गौर से देखो, सर की आंखों से नहीं दिल की आंखों से देखो, और मतलूब होता है गौर व फिक्र। और कुरान की ये बहुत बड़ी खूबी है कि ये सिर्फ पढ़ने की दावत नहीं देता बल्कि जो पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है उस पर गौर व फिक्र की दावत देता है। क्या नहीं देखा तुमने, इल्लज़ीना खरजू, तरफ उन लोगों के जो निकल गए, निकले कहाँ से, मिन दियारिहिम, अपने घरों से। अच्छा, दियारिहिम दार की जमा, वहुम उलूफ, और वो हजारों थे, यानी हजारों की तादाद में कुछ लोग अपने घरों से निकल गए। निकलने की वजह क्या थी, हजर अल मौत, मौत का डर। वजह क्या, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि निकलने वालों के निकलने की वजह क्या थी, तो आपको सामने लिखी हुई मिल गई कि वो मौत के डर से चले गए, वरना घर कोई नहीं छोड़ता। लोग तो डर के घर में आते हैं, लेकिन घर से कोई निकले तो वो बहुत ही ज़्यादा आखिरी हद होती है मेरे ख्याल में। कोई औरत ख़ास तौर पे घर छोड़ के निकल आए तो वो कोई प्यार से नहीं निकलती, उसमें कोई ना कोई वजह ज़रूर हो सकती है, चाहे उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन घर तो बना देता है, लेकिन ये लोग तो घरों से निकल आए। खैर, फ़काल लहुमुल्लाहु, फिर कहा उनसे अल्लाह ने, मोतू, मर जाओ। अल्लाह ने कैसे कहा होगा, अल्लाह ताला आवाज़ तो नहीं देता। मुराद ये कि उस दौर के नबी के ज़रिए ये बात हुई, यह ज़ुबान हाल से मुराद ये कि साहिब कुन फयाकून ने उनकी मौत का पैगाम दे दिया उनको, फिर मर गए, आगे कुछ नहीं है। क्योंकि अल्लाह कुछ कह दे और फिर ये ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बस सब ये नहीं बताया कि फिर वो मर गए, बस कहा मर जाओ तो मर गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, सुम्मा अहयाहुम, फिर उसने उनको जिंदा किया। ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी बात तो का फिक्र क्यों करते हो। इन्नल्लाह लज़ूफत लेनलन्नास, बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है लोगों पर, यानी अल्लाह का बहुत फजल है कि लोगों को मुर्दगी से निकाल कर जिंदगी की तरफ लाता है। मुर्दा कौमों की जिंदगी में अल्लाह सुबहान ताला ऐसे झंझोड़ देने वाले वाक्यात लाते हैं कि जो उनके सोए हुए या मुर्दा जमीरों को जिंदा कर देते हैं, और ये है अल्लाह का फजल। बस सफ़ा ज़िंदगी में कुछ हालात बड़े बुरे लगते हैं, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, आसान तक रहो शैन व हुवा खैरुल लकुम, तुम्हें हो सकता है कुछ हालात बुरे लगे लेकिन वो अच्छे हैं। आज के दौर पे देख ले, हमें किसी को भी चेचनिया की लड़ाई अच्छी नहीं लग रही होगी, बॉस्निया की लड़ाई अच्छी नहीं लगती, कश्मीर की लड़ाई, इसराइल की लड़ाई, चारों तरफ जो कुछ होता है नहीं लगता, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ये ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है, किस लिए, सुमाहिया हूँ, सोई भी कौमों को जगाने के लिए। याद रखिए, जब कोई बहुत गहरी नींद सोया हो और आप उसको उठाना चाहें और वो ना उठे तो लोग क्या कहते हैं, इसके पास शोर करो, ऊंची बात से कुछ बोलो, खटखट करो, बिजली बंद कर दो, पंखा खोल दो, यानी कुछ नॉर्मेलिटी दिखाओ जिससे इसकी नींद का खिमार टूटे और इसकी आंखें खुलें। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, जब कौमें एक लंबा अरसा गहरी नींद का शिकार हो जाती है ना, बेहिसी की मौत आ जाती है, तो अल्लाह फिर इसी तरह के हालात पैदा करता है कि जिसके बाद उस कौम को फिर जगाया जाता है, जिसको कहते हैं कि जागो और जगाओ। और ये अल्लाह का बहुत फजल है लोगों पे। वलाकिन अक्सर नासी ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग इस बात पे शुक्र नहीं करते। अल्लाह सुबहाना ताला की इन हिकमतों को समझ नहीं पाते और उनका क्या ख्याल है कि शायद अल्लाह ताला ये हमसे नाराज़ होके या हमें सजा दे रहे, नहीं, असल में उसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। अब आपको वाकये के अंदाज से ही बिल्कुल समझ आ रहा है समथिंग इज अनयूजुअल। ये कौन लोग थे, कहाँ थे, कैसे हुआ, इसको भी छोड़ दीजिए, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें मुसलमानों को अल्लाह की राह में जिहाद और माली कुर्बानियाँ देने पर उभारा जा रहा है और साथ ही साथ उन कमज़ोरियों से बचने की हिदायत फरमाई जा रही है जिसकी वजह से बिलाखिर बनी इसराइल जवाल का शिकार हुई। ये मान लीजिए कि ये वाकया भी पिछले वाकयात की तरह बनी इसराइल की तारीख का ही वाकया है। सूरत बनी इसराइल जो आगे आएगी 15वें पारे में, वहां भी हम पढ़ेंगे कि बनी इसराइल की तारीख में दो बहुत बड़ी जंगें हुई। अल्लाह ताला ने उनको पहले मौका दिया, फिर उभारा, फिर पीछे हुए, यानी जब वो अपनी किताब पे अमल करते, बड़े खलूस दिल से शुरू करते कोई काम, अल्लाह ताला मदद फरमा देते, लेकिन जब उनके अंदर से वो सारा दर्द निकल जाता तो ऐसे ही हो जाता। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ मुसलमानों को उनकी बातें बताई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल ने यूशे बिन नून, जो कि उनके साथी थे जिंदगी में, उनके शागिर्द भी थे, और ये यूशे बिन नून वही शागिर्द हैं जो वाकया कहफ में हजरत मूसा के साथ इल्म का सफर करते हुए दिखते हैं, जवान थे, यंग थे। इनकी माइयत में एक जंग हुई थी, जिहादर किताल हुआ, और वही पीछे जरा सपना जहन ले चाहिए कि वो फलस्तीन जिसकी फतह का वादा मूसा की जिंदगी में हुआ था, बैतुल मकदस की फतह का वादा अल्लाह ने हजरत मूसा की जिंदगी में बनी इसराइल से किया था, लेकिन कौम ने क्या कहा था बताइए, फसहब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हा होना कायदुन, आप और जाके आपका रब लड़ ले, हम नहीं जाएंगे, और वो वादिय थी मेरे। तो वो वाकया वादा यूशे बिन नून की सूरत में फतह हो गया। अब समझे, मूसा का दौर, मूसा का इंतकाल 40 साल के दौरान हुआ, तो यूशे बिन नून सरदार बने। आप कह लीजिए कि ये यंग लीडर बने, यूथ फोर्स आ गई। इन्होंने फिर ऑर्गेनाइज किया बनी इसराइल के यंग्स को और इनके अंदर जिहाद की रूह फूंकी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनको बात समझ आई तो फलस्तीन फतह हो गया। इसके बाद क्या हुआ, एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो सकती थी। बड़े गौर से लिखिएगा ये बातें, आपको 1947 की तारीख याद आ जाएगी ये वाकया पढ़ते हुए। मैं इस लेसन को ना सिर्फ ये कि इसके असल लेसन्स, बल्कि मदीना के हालात, बल्कि आज हमारे अपने पाकिस्तान के हालात से भी रिलेट करती हूँ अक्सर, कि देखिए अल्लाह ताला ने आज हम मुसलमानों को भी इस बात को समझने की कितनी ज़्यादा मोहलत दे दी कि हम भी इसको देखें। हुआ क्या कि जब बैतुल मकदस फतह हुआ, करना क्या चाहिए था, एक बहुत मुस्तहकम हुकूमत बनाते, राइट, स्ट्रॉन्ग वहाँ हुकूमत बनती ताकि इर्द गिर्द के मुल्कों को पता चल जाता कि ये कमज़ोर नहीं। इन्होंने ये नहीं किया, बजाय इसके कि एक मजबूत हुकूमत बनाते, इन्होंने छोटी छोटी 12 हुकूमतें बना ली। भला क्यों, 12 फिरके, 12 कबीले। अब जाहिर है एक हुकूमत बनती तो लीडर तो एक ही होना था ना, सदर पाकिस्तान भी एक होते, वजीर पाकिस्तान भी एक होते, या सदर फलस्तीन भी एक होते तो वजीर फलस्तीन भी एक होते, तो वो लड़ाई हो जानी थी बड़ी सख्त कि भाई ये सदर आपने उनका चुन लिया, हमारा नहीं रहा, तो कहा अच्छा भी ठीक है 12 बनाए। चलिए ये भी कोई बात हो गई, 12 बना लेते, ठीक है, काम बांट गया, 12 बने, फिर आपस में लड़ते भी रहे, लड़ाइयां शुरू। याद रखिए, तौहीद में ही खैर है, एक नियाम में दो छुरियां या दो तलवारें नहीं चलती। जब इनकी आपस की लड़ाइयां शुरू हुई, इनकी हुकूमत कमजोर हो गई। 300 साल तक ये एक बड़ी कसम पुरसी की हालत में वहां रहे। उसके बाद तो हाल ये हुआ कि दुनिया इन पे तंग हो गई, इर्द गिर्द की काफिर और मुशरिक कौमों ने इनको दबा लिया। ऐसे ही होता है, आज मुसलमानों के साथ यही हो रहा है, अगर आप नाम चेंज करके लिख लें तो जरा सा भी फर्क नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना, कहानी में से बस नाम और किरदार चेंज कर दिए गए, करके देख लें आपको कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। जब मुसलमान आपस में बटे, फिरकों में गए, तो इर्द गिर्द की काफिर और मुशरिक कौमें ऊंची हुई, उन्होंने इनको दबाया। जब मुशरिक ऊपर आए तो उन्होंने बहुत सौ को इनके घरों और मुल्कों से निकाल दिया। ये क्यों निकले घरों से, आप सोचते हैं कि ये घर से निकलना कोई मामूली वाकया, नहीं, कुछ तो माल कमाने ही निकल पड़े होंगे उन्हीं काफिर मुल्कों की तरफ के जिधर के दावे थे। कुछ मुसलमानों के बच्चे तालीम के लिए उधर निकल गए, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कुछ लोग निकल गए, हुआ क्या कि इनके घर खाली हो गए। आज भी आप देखिए हमारे मुसलमानों में से टैलेंट जो है, जो क्रीम मुस्लिम्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो बाहरी सेटल हो जाए, ताकि फिर हम बाहर बैठ के अपने मुल्क के हालात पर तबसरे करें और रोएं और धोएं। नतीजा क्या हुआ कि इनकी कोई से ही ना हुई, ऐसे लगा कि जैसे कचरा रहन खूंद रह गया। अब इनके कुछ लोगों के दिल में ख्वाल आया, ओहो ये क्या हो गया। फिर इन्होंने उस वक्त के नबी से, याद रखिए अल्लाह ने नबूवत का तार बनी इसराइल में टूटने नहीं दिया, यही वजह थी कि इस कौम के वाकयात बहुत सारे आते हैं नबियों के नाम से। तो ये अपने नबी के पास आए, कहने लगे कि हमारे लिए कोई बादशाह यानी कोई सिप सलार मुकर्रर कीजिए, अब हम अल्लाह की राह में जंग करेंगे। चुनाचे जो जंग हुई वो तालूत और जालूत की, और इसके बाद गोया के बनी इसराइल का दौरे खिलाफत राशिदा शुरू हो गया। आप कह सकते हैं कि जैसे मुसलमानों की तारीख का बेस्ट टाइम नबी सल्लम के बाद कौन सा था, खिलाफत राशिदा। तो जो नबी सल्लम के बाद चार खलीफाओं का दौर था ना, आप कह लीजिए कि बनी इसराइल की तारीख का ये दौर उनकी खिलाफत राशिदा थी। ये कब हुआ, मूसा के 300 साल बाद। देखिए ये बातें लिख लेंगे ना तो आज की दोनों वाक्या आगे तक फिर मुझे बीच में ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। नबी सल्लम के सहाबा का बेहतरीन दौर कौन सा था, आपके फौरन बाद। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों का बेहतरीन दौर 300 साल बाद आया। समझ आ रही है, अगर मूसा के साथी अच्छे होते ना नबी सल्लम के प्यारे साथियों की तरह, तो उनका खिलाफत राशिदा भी फौरन शुरू हो जाता। लेकिन 3 साल ये फिरकावारियों में पड़े रहे, उसके बाद जब इनकी आंखें खुली तो फिर इनको समझ आई और इन्होंने अपने आप को जोड़ा। अब नबी सल्लम के सहाबा का दौर वही चल रहा था, वहां मदीना में हिजरत करके आने वाले थे मक्का से, और जो सहाबा ने जाने दी, खून दिया, कुर्बानियां दी, उसके नतीजे में अल्लाह के नबी कल आया हुआ दीन गालिब हो गया, आपकी जिंदगी में हुआ, मदीना नाम की रियासत कायम हो गई और आपके बाद सहाबा की हुकूमत शुरू हो गई। लेकिन वहां 300 साल बाद हुआ। इसमें तीन खलीफाएं, तीन खिलाफतें लिखेगा, हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिलाफत, ठीक है। लेकिन सुलेमान के बाद फिर इनके आगे दोबारा गड़बड़ शुरू हो गई। इनकी हिस्ट्री अगर आप देखें ना, चंद साल सुकून के, खैर के, इत्तेफाक के, ये तीन दौर जो थे ना, तालूत, दाऊद और सुलेमान का, ये इनकी हिस्ट्री का बेस्ट दौर है। जैसे आज हम कहते हैं ना खिलाफत राशिदा, तो हिब्रोस हिस्ट्री में दाऊद, तालूत और सुलेमान का नाम लेकर ये बहुत रश करते हैं कि वो बेहतरीन दौर था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो ही सुलेमान अलैहिस्सलाम गए दोबारा इनकी सल्तनत तकसीम हुई, सुलेमान ही के दो बेटों में तकसीम हो गई। बात वाज़ेह, एक हिस्से का नाम हो गया इसराइलिया और दूसरे हिस्से का बन गया नाम यहूदिया, दो रियासतें वजूद में आ गई। इस मुकाम पे जो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, तालूत और जालूत की इस जंग का तस्करा, जिसके बाद तारीख बनी इसराइल में गलबे और खिलाफत राशिदा का आगाज हुआ। यानी आप कह लीजिए कि बड़ा टर्निंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम बनी इसराइल की हिस्ट्री का। ये सारी कहानी क्यों सुनाई, कि पीछे आपने जो पूरे पहले पारे में बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ी है वो कब की थी, बोल दें सब ऊंची बात से, जिसको पता है, सबको ही पता है, मूसा के दौर की, फिरौन के दौर की, फिर 40 साल के बाद ये थी की। अब मूसा से 300 साल बाद की हिस्ट्री हम पढ़ने लगे हैं। बात वाज़े, ठीक है। तो यहां असल में सहाबा कराम को एक आईना दिखाया जा रहा है कि जिन मरहलों से गुजर कर वो रूज पाए थे, अब तुम्हारे सामने बदर के तौर पर ये वाकया आने वाला है, तुम अपनी फिक्र कर लो, तुम इसको समझ लो, ठीक है। अब इस आयत के अल्फाज पे थोड़ा सा गौर व फिक्र जरूर करना चाहिए हमें, क्योंकि हर आयत का एक हक होता है और वो हक अदा नहीं होता जब तक हम उसमें अल्लाह ताला के इस्तेमाल किए हुए अल्फाजों को ना देखें। तो अलम, आप देखिए आ क्या है, जबर अलिफ क्या है। अब अगर इस एक आयत को और सूरत बकरा की पहले लफ्ज को देखें, अलिफ लाम मीम, तो मैंने इसको अलम पढ़ा, मैंने इसको अलिफ लाम मीम की, चले लाम को मैं ना भी लंबा खींचूं, तो मैंने इसको अलिफ लाम मीम क्यों नहीं कह दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। और कुरान पाक में बहुत सारी सूरतों में ये लफ्ज आता है, जैसे अलम तरा कई फफाला, तो आ क्या है, सवाल है, क्वेश्चन। इसको कहते हैं हर्फ इस्तेफहाम। कभी कभी ये सवाल के लिए होता है, कभी कभी किसी को आवाज देने के लिए भी होता है, यानी किसी के बात के पूछने के लिए भी आता है और किसी को पुकारने के लिए भी। ठीक है, यहां इसके साथ आ रहा है लम। लम क्या है, पीछे पढ़ चुके हैं? नहीं, बट कौन सा नहीं? नेवर वाला। ठीक है, अलम क्या नहीं। तो जब हर्फ इस्तफहाम लम के साथ आ गया तो अलम बन गया, और अलम का मतलब क्या नहीं। देखने में सवाल लग रहा है ना, लेकिन लिखिए यहां हैरत है। अरबी जुबान में सवाल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। यहां लम जो है ये मुजारे पर आता है, तो इसके मानी फेल माजी मनफी के कर देता है। जैसे लम यलिद, आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, उसने नहीं जना। तो अलम तरा, तरा का लफ्ज देखिए रुयत से है, ता तुम हो और रा मैंने, रा हमजा या। रुयत कहते हैं किसी मरई चीज का इदराक करना, यानी कोई चीज जिसको आंखों से देखा जा सकता है उसको देखना। ये लफ्ज आंखों से देखने या अकल और बसीरत से मालूम करने या ख्वाबो ख्याल में देखने और तसव्वुर करने सबके लिए आता है। यानी आंखों से देख लें, ख्वाब में कुछ देख लें या तसव्वुर में देख लें। जौहरी एक अहले लुगह कहते हैं कि जब इसके साथ सिर्फ एक मफूल आए तो इसके मानी आंख से देखना होता है, और जब दो मफूल आए तो इसके मानी जानने या इल्म होने के होते हैं। यहां क्या है, अलम तरा इलल्लजीना, इला तरफ उन लोगों के देखा ना, तो यहां इससे मुराद क्या है, गौर व फिक्र करना। जब ये कैफियत जो इस वक्त आपके मेरे सामने है तो फिर क्या है, गौर व फिक्र करना। जब इसके बाद इला आए तो मानी देखना, यहां आ रहा है ना इला तरफ, टूवर्ड्स के मानों में, तो गौर व फिक्र करना और इबरत हासिल करना। इबरत देखो, ये नहीं है कि बस ऐसी कह दो। और ये अंदाज क्यों अपनाया जाता है, देखिए आप अपने बच्चे को कहानी सुनाते हैं ना, एक बादशाह था, ये था, वो था, शायद वो शुरू के कुछ हिस्से मिस ही कर दे, लेकिन दूसरों के, क्या तुमने देखा, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, साथ ही अंदर से भी बंदे के कान खड़े हो जाते हैं, सारा जिस्म कान बन जाता है कि इसके बाद कोई बड़ी अहम बात होने वाली है। ठीक है, तो ये मुखातब, मुखातब कौन होता है, आप लोग है ना इस वक्त, मैं और आप कुरान के मुखातब हैं। मुखातब की तवज्जो के लिए होता है कि अगर इधर उधर देख रहे हो, तुम्हारी तवज्जो भटक गई थी, तो वापस आ जाओ इस चीज के अंदर, क्योंकि तुम्हें बड़ी अहम बात बताई जा रही है। और इस तरह बहुत खूबसूरत मिसालें खासतौर पर इस जुमले से शुरू होती है, हम कुरान में आगे जाके पढ़ेंगे अल्लाह ताला ने चाहा, और ये सारी चीज हमारे सामने आएगी। फिर आप देखिए कि लफ्ज रुया ख्वाब को कहते हैं ना, वो भी आगे इंशाल्लाह जब आएगा तो हम उसको देखेंगे। ताज्जुब हो रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें हुआ, तुमने गौर नहीं किया। खैर क्या नहीं देखा, इलल लजीना तरफ उन लोगों के, खरजू पहले बहुत दफा हो गया, जो निकल गए, सारे ही निकल गए। खुरूज कहते हैं उबरने को, उर्दू में लफ्ज खुरूज सुना होगा, ये जो एग्जिट होता है ना अरबों में, यहां भी खुरूज लिखा होता है, रोड्स के इर्द गिर्द एंट्रेंस और एग्जिट, तो जो एग्जिट होगा उसके ऊपर खुरूज लिखा होता है, निकलना, निकलने वाली चीज। मुराद ये कि वो सब निकल गए उनके अंदर ये नवा। यौमुल खुरूज अरब लोग ईद और मेले को कहते हैं, क्योंकि उस दिन सब लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, जेबो जीनत के साथ निकलते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अल्लाह सुबहाना तला कहते हैं, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो निकले, मिन दियारिहिम, घर को दियार कहते हैं, दाल वाव रा इसका रूट है, दारा या दूर दौरन, किसी चीज का इस तरह घूमना कि वो घूम फिर कर वहीं आ जाए जहां से चली थी। पुरकार क्या होती है, एक कोना बीच में होता है और दूसरा इधर है, कंपस कहते हैं ना उसको। तो अरबी जुबान में पुरकार को अद्दवारतु कहते हैं, दवारतु दायरे लगाने वाली, क्योंकि उसका सिरा हमेशा बीच में होता है। और दायरे को क्या कहते हैं, हल्का, जैसे हम आप कहते हैं ना हल्का बना के बैठे, तो सब गोल दायरे में बैठे, तो इसको दायरतु कहते हैं, इसी की जमा फिर दवायरा। ठीक है, तो घर को दार क्यों कहते हैं, मकान इसलिए कि इसमें लोग घूमते फिरते हैं या सारा दिन बाहर घूम फिर कर फिर वहीं आ जाते हैं। बात वैसे एक इंसान अपने घर में सुकून पाने के लिए आ जाता है, और जब घर में आ जाता है तो फिर उसको उसके बाद सुकून मिल जाता है। तो ये लोग अपने घरों से निकल के बहुम उलूफ, उलूफ लफ्ज देखिएगा, बहुत दिलचस्प लफ्ज है। आपने उर्दू में एक लफ्ज सुना वैलिफ लैला, क्या था, आप कहेंगे टीवी पे एक सीरीज आती थी आज से कोई 20-25 साल पहले। हम लफ्ज देखे ना अल्फ हमजा लाम फा, अल्फ 1000 को कहते हैं। ये जो अलिफ लैला कहानी थी ना वो 1000 रातें थी, असल में अरबी की स्टोरी भी अलिफ लैला, अल्फ लैला कहते हैं बेसिकली। हम तो हर चीज को उर्दू और अरबी मिला देते हैं ना, तो अल्फ क्या होता है, कुछ चीजों का मिलना। अल्लाफा, ये मेरे हाथ को देखिए, हम पढ़ेंगे सूरत नूर में ये लफ्ज, फिर बहुत समझ आएगा। अल्लाफा युअल्लिफु, ये जो बादलों की तहें बनती है ना, इसको अल्लाह ताला कहते हैं। वो अल्लाह है जो बादलों को मुख्तलिफ जगह से टुकड़ियों टुकड़ियों में लाता है, फिर अल्लाफा युअल्लिफु, फिर उनको मिला देता है। तो लफ्ज अल्फ के अंदर होता है मिलाना। उल्फत लफ्ज भी इसी से है, क्योंकि सूरह तौबा में आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला के अगर अल्लाह ना चाहता तो तुम्हारे दिलों में उल्फत ना डाल देता। सूरह कुरैश में आप क्या पढ़ते हैं, ली ईलाफी कुरैश, तो वो जो ईलाफ लफ्ज है वो भी इसी से ही है, ठीक है। फिर इसी तरह आप सूरह अल इमरान में पढ़ेंगे कि इस कुन तुम आदान फअल्लफ बैना कुलूबिकुम। अब सवाल पैदा होता है, एक तरफ उल्फत है, मोहब्बत है, बादलों का जमा होना है, तो एक तरफ ये हजार को क्यों कह गए। अब देखिए हजार कैसे बनता है, पहले आप 10 रुपए जमा करते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो 100 हो जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो 110, 120, 200, 210, 220, ये पायल। अब ये जो नोटों की गठियां क्या हैं, हजार कब बनता है, देखिए ना, 3-4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाइयों पे जमा होती हैं धाइयां, धाइयों पे जमा होते हैं सैकड़े, सैकड़ों पे जमा होते हैं हजार। तो जब नोट या कोई चीज गिनती तादाद एक दूसरे से जमती है तो उसको अल्फ कहते हैं। अल्फ क्या हो गया, 1000। तो यहां क्या है, उलूफ, हजारों, थाउजेंड्स, यानी वो कोई छोटा गिरोह नहीं था। और आप इमेजिन तो कीजिए कि किसी शहर या इलाके या बस्ती में से हजारों लोग जो है वो निकल जाए, तो वो तो वीरान हो जाएगी, उसके अंदर तो बहुत खराबी होगी। वहुम उलूफ, चले हजारों थे, निकल गए अपने घरों से, क्यों निकले, हजर अल मौत, हजर का लफ्ज पीछे पड़ा आपने, डर के लिए। तो अरबी जुबान में और भी बहुत सारे लफ्ज हैं, शफक, नुजर, हजर क्या होता है, या हजर क्यों आए, तो हजरा कहते हैं, हिजरुन हजरा, खौफ ज़दा करने वाली चीजों से बचना। असल में इसके लफ्ज में ना मुख्तात होने का मानी होता है, केयरफुली, यानी घर से वो क्यों निकले, एहतियात के तकाजे से। कोई और लफ्ज अगर आप इस्तेमाल करते तो लफ्ज एहतियात नहीं आनी थी। इसी तरह इज्तनाब करना, बचाओ, चुकन्ना रहना, जैसे आप कहते हैं ना बींग केयरफुल। अरब लोग कहते हैं रजुलुन खजीरुन, उस शख्स को जो सख्त एहतियात की वजह से रात को जागता ही रहे कि सो गया तो चोरी ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो ना आ जाए। इसी तरह इब्नुल अहजार, उस शख्स को कहते हैं जो बड़ा मुख्तात हो। हजारिन खजारिन कहते हैं बचो बचो को। इसी तरह अल खाजिर कहते हैं उस शख्स को जो हथियार लगाकर जंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हो, ठीक है। अब ये तो इसकी मुख्तलिफ किस्में है ना, तो यहां देखिए हजर क्या है कि बंदा अपनी तबीयत के एतबार से डरता है, किससे, मौत, मौत से डरता है, हजर अल मौत। सूरह निसा में भी आप पढ़ेंगे खुजू खिजरकुम, तो मुराद जहां क्या है, बचाओ। बंदा बच नहीं सकता लेकिन वो बचने की कोशिश करता है। ये मौत क्या है जिसको आज तक कोई ना समझा, मीम वाता माता यमोतु, मौत असल में हयात की जिद है, ऑपोजिट ऑफ हयात। असल में आपको पता है कि मजाजन मौत किसको कहते हैं, एक होता है डायरेक्ट मीनिंग, जैसे मैं आपको समझाती हूं कि हम किसी के मरने पे क्या कहेंगे, फलां फौत हो गए, लेकिन उर्दू में हम कभी कभी मजाजन क्या कहते हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मुझे बताएं अल्लाह को प्यारा होने से हम पाकिस्तानी और इंडियन के अलावा कोई समझेगा कि ये कोई फौत हुआ है। हम कहेंगे माशाल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह को प्यारे हो गए, दुआ करें हम सब भी अल्लाह को प्यारे हो जाएं, हमारे घर वाले भी हो जाएं। बट वो मजाजन, मजाजन समझ गया, ऐसे, यानी सीधी चीज नहीं, वो जिसको कहते हैं नाक यहां से नहीं पकड़ो, घुमा के पकड़ो, राइट। तो मजाजन लफ्ज मौत क्या, एक लफ्ज बोलूंगी आपको मजा आएगा, सुकून। मौत का मजाजी माना सुकून होता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया की मुश्किलात से घबराकर मौत की दुआ करते हैं, दुआ कीजिए कि मौत सुकून का जरिया बने, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। हर वो चीज जिसमें जमूद की वजह से हरकत और इर्तका रुक जाए वो मुर्दा है। मरने के बाद सबसे पहले तो हमारी हार्ट बीट बंद होती है। आपको तो हमारे अपने जिस्म में से दिल की आवाजें आती रहती हैं धक धक, स्टेथोस्कोप लें कभी, डॉक्टर आपके अंदर की धड़कनों को भी गिन लेता है, हैं? तो ये पता नहीं लोग क्यों कहते मेरी धड़कनों में तेरा नाम है, तो डॉक्टर को पता लग गया तो क्या बनेगा, चोरी पकड़ी गई। कोई प्रेग्नेंट औरत से बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि पहले तो अल्ट्रासाउंड होता था तो उसमें पिक्चर डॉक्टर्स देखते थे ना, तो अब यहाँ जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो आवाजें सुनते हैं बच्चे की, डिफरेंट जगहों की, ये उसकी धड़कन की है, ये उसकी है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि बच्चे की क्या कैफियत है। तो मौत क्या, आवाजों का रुकना, उसके पास आपको किसी किस्म की आवाज नहीं आएगी, साकन हो जाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मात अतिर रीख, अरब कहते हैं हवा रुक गई, रीख कहते हैं हवा को, यानी हवा मर गई, मुराद ये कि हवा रुक गई, साकिन हो गई। मात अतिर नार, आग मर गई, कब कहते हैं, जब आग बुझ जाती है। फिर इसी तरह मात अतिल हमरू, शराब का जोश जाता रहा, यानी एकदम शराब का जो जोश होता है वक्त के साथ ठंडा होता है ना, तो उसके लिए भी लफ्ज लोग मौत का इस्तेमाल करते हैं। नींद पे भी इसका इतलाक होता है। मातर रजुल, आदमी सो गया। अच्छा, अब मैं आपको मुश्किल में डालूं कि आसानी में डालूं, बोले क्या चाहते हैं, जो आप कहें। तो फिर मैं आपको मौत की मुख्तलिफ किस्में नहीं लिखाती, लिखनी है, एक आधी लिखा देती हूँ। आप देखिए कि जब हयात के मुकाबले पे आप मौत को लेते हैं ना, तो इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, यानी मौत एक ही किस्म की नहीं, तकरीबन चार मुख्तलिफ किस्में हैं। नंबर एक, कुव्वत नामिया। नमूव क्या होती है, फलना फूलना बढ़ना। तो मौत की एक किस्म क्या है कि बंदे की बढ़ोतरी खत्म हो जाए। आपने कई बच्चों के बारे में डॉक्टर्स को कहा होगा ये ग्रो नहीं कर रहा, इसका वेट नहीं बढ़ रहा, यानी इंसान के अंदर से बढ़ने और फलने फूलने की कुव्वत का जाहिल हो जाना। जैसे अल्लाह जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है, अल्लाह युहयिल अर्दा बादा मौतिहा। अब जमीन कैसे मरेगी, कभी सोचा आपने, जमीन की मौत क्या थी कि उसके अंदर से पैदावार होनी रुक गई, ठीक है, इसको भी मौत कहते हैं। यानी जैसे एक औरत है तो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये भी मौत होगी उसकी। आप कह सकते हैं कि एक बंजर औरत थी, बांझ औरत थी, फिर अल्लाह ने उसको औलाद दे दी, ठीक है। दूसरा मौत का लफ्ज आता है महसूस, यानी फील करने की कुव्वत का जायल हो जाना। सूरत मरियम में आप पढ़ेंगे कालत या लैतनी मित्तु कबला हाजा व कुंतु नसीयम मनसिया। मरियम ने कहा काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। मुराद क्या था, ये दर्द और कर्ब जो इस वक्त है इसको मैं महसूस ना कर सकती। तो मौत का मानी क्या है कि महसूस की कुव्वत खत्म। और आप अगर चारों को जोड़ेंगे ना तो मौत के बाद ये सब होता है। मरने वालों को हमने फिर कभी फलते फूलते नहीं देखा। पेड़ फूल सकता है, फट भी सकता है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होती। जो मर जाते हैं ना उनके कद लंबे होते हैं ना कुछ और। और याद रखिएगा कि मौत के लफ्ज में तीसरा लफ्ज बहुत अहम है, अकल और शऊर का जवाल। चारों इकट्ठे करें फिर मैं इसको रिलेट करके आपको बताती हूँ। अकल और शऊर का जवाल होता है। पुराने पाक में आता है इन नकला तस्मौल मौता, तू मुर्दों को नहीं सुना सकता, यानी ऐ नबी तेरी बात वो ही सुनेगा जिसका शऊर जिंदा होगा। कुरान की दावत पे लब्बैक कहने के लिए जिस जिंदगी की जरूरत होती है ना, उसके खत्म होने को मौत कहते हैं। तलब खत्म, तड़प खत्म, दिल में तलब ही नहीं है, भूख मर गई। आप ये लिख लें भूख मर जाना, इल्म की या वही के जज्ब की भूख मर जाए, इसको भी मौत कहते हैं। चौथी चीज होती है खुजन और खौफ, जो जिंदगी को दोभर कर दे। मसलन पुर मुशक्कत हालात, इफलास गुर्बत, जिल्लत महकूमी की जिंदगी, वो जिसको कहते हैं ना कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। कुरान पाक में आप पढ़ेंगे व याती हिल मौत मिन कुल्ली मकान व मा हुवा बिमैत, उसको चारों तरफ से मौत आएगी लेकिन वो मरेगा नहीं। ये बीच के पारों की 14वें 15वें पारे के बीच की कोयत है। चारों तरफ से जिल्लत और अफलास और ये सब कुछ आएंगी लेकिन मौत नहीं आएगी। मतलब क्या है कि जिंदगी की बेसिक जरूरियात भी नहीं पूरी हो रही, और ये जहन्नम की जिंदगी की बात है। अब आप इन चारों को जमा करें, जब एक इंसान इस दुनिया से जाता है, आप अपने किसी प्यारे को सोचें, जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके अंदर आप ग्रोथ खत्म, महसूस करने की कैफियत खत्म, उसके अपने बच्चे उसके पास बैठे रो रहे हैं, उसको नहीं पता कि चुप कर मेरे बच्चे, अक्ल और शऊर खत्म हो जाती है। और इंसान अगर जिंदगी में तैयारी ना करके गया हो तो वहां खौफ और हुजन है। आज मेरे आपके पास वक्त है, मौत से बचने का। गशी और जुनून को भी मौत कहते हैं, और अलमैता कहते हैं वो जानवर जो बिला जिबा किए मर जाए। तो याद रखिए कि मौत हकीकत है, सिर्फ जिंदगी के सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है, या इसके रुकने का नाम मौत नहीं है। बदतरीन मौत आपको पता क्या होती है? मैं आपको सिर्फ शऊर दिलाने के लिए कहती हूं, अल्लाह ना करे कि भी वैसे किसी के साथ हो, किसी हादसे में पूरे घर वाले मर जाएं, पूरा खानदान किसी मौके पे जमा था, वहां जलजला है, सारे मर जाएं। इज्तमाई मौत, जब एक घर से चार जनाजे उठते हैं तो इज्तमाई मौत होती है ना, इसी तरह बदतरीन मौत है कौमों की इज्तमाई जिंदगी की मौत। ये है असल में इधर, जब कौमें इज्तमाई तौर पे मुर्दा हो जाती हैं, ना जीती हैं ना मरती हैं, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना उनको जिंदगी का पैगाम मिलता है अल्लाह के हुक्मों से, और ना वो जिंदा कौमें हैं कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सके। तो मान लीजिए कि ऐसी कौमें फिर भागती हैं दुश्मनों के डर से, वो अल्लाह से डरे ना डरे दुश्मन से बड़ा डरती हैं, उनकी पॉलिसी से डरती हैं, उनके तकाजों से डरती हैं। तो अल्लाह का तफकाल अलहुमुल्लाहु मूतु, मर जाओ फिर। अब आपको ये जुमला समझ आए, अल्लाह ने ये नहीं कहा था सारे ही मर जाओ, अब मर जाओ, जाओ फिर मरते हो तो मरो। ये असल में रूहानी मौत है, जब कौमें गुलामी का जहन पा लेती हैं फिर उनकी जिंदगी मुर्दों से बदतर है। यहां असल में अल्लाह ताला ने उनको एक खास मौका दिया, सुम्मा हया हूं, फिर जी देता है। अब यह हया बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है जो भी हमने मौत की बातें की हैं, हयुन, हा या। आगे कहीं आएगा तो इसकी डिटेल्स लिखाऊंगी कि जिंदगी क्या होती है, लेकिन यहां आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तला ने उनको जिंदा किया, कैसे किया, क्या हुआ, कुछ नहीं बताया कुरान ने। बस मेरे आपके लिए इसमें सबक यह है कि मुर्दा कौमों को जिंदा करने की जरूरत है। आज हम मुसलमान अगर अपने हालात पे नज़र डालें तो बहुत सारी बातें इसमें हमें दिखती हैं। इसीलिए आप देखिए कि इस कौम को जिस पे अल्लाह ने अपने ये सारे फजल और करम किए और उसके बाद उनको इन हालात में डाला, अब आगे इससे निकलने का रास्ता बताया जा रहा है कि देखो तुम ऐसी बातें जो कर रहे हो ये मत सोचो कि तुम इन बातों में पढ़ के अब अपने आप को ज़ाया कर दो, ये अल्लाह का फजल है तुम्हारी ज़िंदगी में हालात आए। और ये जो बात है ना कि हज़र अल मौत, मौत के डर की वजह से वो भागे थे, तो जब मुशरिक और काफिर मुसलमानों पे हमले करते हैं ना तो दहशत तारी हो जाती है मुसलमानों पर, कहते नहीं अपने मुल्कों में हालात अब ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि दुश्मन ने बम फोड़ा तो हमारे मुल्कों पर फोड़ेगा, वो अपने पर तो नहीं फोड़ेगा। आज इतने भी बेहिस मुसलमान हैं कि जंग के नाम पर वो उन्हीं मुल्कों में भागेंगे अपना मुल्क छोड़ के कि जिधर से हो सकता है इशारों पे बम फेंके जाएंगे, कि चलो ये अपने मुल्कों में तो नहीं फेंकेंगे ना। सुम्मा अहयाहुम, फिर इनको जिंदा किया अल्लाह ताला ने। कहा शमोइल, शमोइल लिख लीजिए, या जैसे शमाइला लफ्ज़ है ना हमारे कल्चर में, बस उसी से शमाइल या शमोइल, सीन कर दें या शीन। अल्लाह ताला ने इस नबी को उस दौर में फिर भेजा जब बनी इसराइल का ये सारा रिवाइवल हुआ। तकरीबन कहते हैं कि 20 बरस तक ये मौत कौन सी, खौफ और बुजदिली की मौत थी, यानी 20 साल फिर बनी इसराइल के अंदर बहुत ही खराबियों के गुजरे और मुर्दगी के गुजरे। फिर शमूएल नबी आए, उन्होंने फिर रिवाइवल ऑफ दीन किया। याद रखिए दीन वाले मुहसिन होते हैं किसी भी सोसाइटी के, आज के दौर में और पहले दौर में अंबिया कराम। जब कौमों में से खून का आखिरी कतरा निचड़ने लगता था ना लिल्लाहियत का, तो अल्लाह नबी भेज देता था। अल्लाह ने इन कौमों को खाली नहीं छोड़ा, ये इस कौम के साथ हुआ, बिल्कुल ये बेकार हुए। अब कैसे चेंज हुए, देखे ना, कौमें बिगड़ी, सियासी रंग में आ गई, दुश्मनों के कब्जे में आई, तो क्या इसके लिए एक स्ट्रांग सियासी निजाम चाहिए था, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, नहीं। फिर नबी ही आया, लिखे ये बात आज अपने लिए, आज के मुसलमानों के हालात को सियासतदान नहीं बदलेंगे, मजहबी रहनुमा बदलेंगे। ये मेरा जुमला, मैं रहूं ना रहूं इसको लिख के डाल दीजिए, जब मुसलमानों में यूनिटी आनी है, गलबा आना है, महरूमियत का एहसास खत्म होना है, वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम का एहसास पैदा होना है ना, ये दीनी रहनुमाओं की कोशिशों से आना है। इसलिए शैतान आज दीनी रहनुमाओं को लड़ाता है, उनको इकट्ठा ना होने दो, तो फर्कों में डालो, क्योंकि जिस दिन मजहबी लीडर जुड़ गए सारी उम्मत एक तस्वीर की तरह जुड़ने लगेगी। آج مسلمانوں میں یہ جو فرقہ واریت کا زہر پھیلایا گیا نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جائے. آپ اسپین کی ہسٹری پڑھ لیں. میں جب اسپین گئی تو میں ساتھ بک لے کر گئی, میں نے وہاں ساری پڑھی اور مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ میں ماضی میں نہیں, میں حال میں جی رہی ہوں. آج کے دن کی یہ کہانی پڑھ رہی ہوں. وہاں اسپین کے ٹوٹنے کی وجہ بھی یہی لالچ تھے, یہی کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر ایک نبی کو بھیجا, دوبارہ نشات ثانیہ ہوئی یعنی تجدید ہوئی, ریوائیول آف ریلیجن ہوئی. اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا, یہ جو احیاء ہوں میں نا, یہ جہاد کا جذبہ. ہم کچھ کریں گے, ہم کوئی بیکار تھوڑی, اللہ نے ہمیں دماغ کے بغیر تھوڑی پیدا کی ہے. یعنی قوموں میں جہاد, جذبہ کچھ کر لینے کا, محنت کرنے کا جذبہ پیدا کیا. اور جب قوموں میں واقعی آج ایسے موٹیویٹرز کی ضرورت ہے. اکثر میں ایک جملہ لکھاتی ہوں کہ دا بیسٹ ٹیچر از کون ہے, دا بیسٹ موٹیویٹر. استاد کون ہوتا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے؟ کتابوں سے علم مل جاتا ہے آپ کو, آج نیٹ سے علم مل جائے گا, بٹ استاد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف علم نہ دے. علم تو ان کو کہ جا خود پڑھ لو کتابوں میں سے, لیکن اپنے اوپر لے کر موٹیویشن دے کہ دیکھو آؤ یہ کچھ کریں, کچھ پلانز بنائیں, کچھ ارادے کریں, کچھ کام کرتے ہیں, کچھ ایسا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تاکہ سوئی بھی امت جاگے. اور یہ کام ہوا. اب یہ جسمانی طور پہ مردہ تھے نہیں, بعض لوگوں نے تفسیروں میں صفوں کے صفحے لکھ دیے, وہ زندہ تھے, وہ مردہ تھے, ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے بڑے. میں اگر پڑھ پڑھ کے سناؤں آپ کہیں گے اچھا مزہ تو آپ کو بڑا لگے گا, آپ کو لگے گا آپ کوئی شاید وہ سٹوری سن رہی ہیں, لائک کون سی موویز ہوتی ہیں, کلائمیکس ہوتا ہے یا بہت ایک تھرل موویز. بٹ اصل بات یہ ہے کہ روحانی اور اخلاقی طور پہ ان کو زندہ کیا, اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں. شکر کیا ہوگا ایسے وقت میں؟ اب آپ دیکھیے آج کے دور میں, میں اور آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ ایسے دور میں اللہ کا شکر کیا ہوگا, کس طرح سے ہم شکر کریں گے کہ اللہ کے احسانات کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ بدر کے لیے صحابہ کے ذہن بنا رہا ہے کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تمہیں اگر وہ کام کرنا پڑا جو اسماعیل نبی کی مائیت میں ہوا, تو تم پیچھے نہ ہونا.